ओम शांति। जो पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाए, क्योंकि प्रश्न उत्तर करेंगे ना इसमें, आप पूछेंगे तो पीछे से सुना ही नहीं देगा, तो आगे आ जाए। हम सब बाबा के बच्चे इस कलयुग से तो निकल चुके, अभी संगम युग में हैं, और संगम युग से आगे अभी सतयुग में जा रहे हैं। पर कर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र पर भी है, और उसमें भी विशेष माया के साथ, रावण के साथ हमारा भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में सारथी बाबा हमारे साथ है, इसलिए विजय हमारी निश्चित है। परंतु युद्ध में जीत प्राप्त करने के लिए ये जो हमारा रथ है इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। रथ ठीक रहेगा तो रथी और सारथी भी इससे काम ले सकेंगे, और ये शरीर रूपी रथ अगर ठीक नहीं है तो फिर रथी को भी तकलीफ पड़ती है और युद्ध को जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका उदाहरण हमने महाभारत में देखा है कि कर्ण जो कितना बलशाली था, महान धनुर्धर था, फिर भी युद्ध में उसकी हार हो गई, वो मारा गया। क्यों? क्योंकि उसका रथ खराब हो गया था युद्ध के मैदान में। तो हमारा ये शरीर रूपी रथ, ये हमारा सबसे बड़ा साधन, सबसे इम्पोर्टेंट साधन, और अगर इस युद्ध के मैदान में ये रथ में गड़बड़ हो जाती है तो हमारी जीत डाउटफुल हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है। इसलिए हम प्रयत्न करते हैं कि ये रथ भी ठीक रहे, ये बीमार नहीं हो। नहीं तो अगर बीमार हो गए तो हम सेवा करने के बजाय दूसरे दो जने हमारी सेवा करेंगे तो और हमारे पर बोझ चढ़ेगा। तो ये पूरे ही संगम हम निरोगी रहें और निरोगी रह के श्रेष्ठ सेवाएं देते रहे और इस युद्ध में विजय प्राप्त करें, इस हेतु खास ये आज का सेशन अभी रखा हुआ है। एक बार पहले भी मैंने यहां इस आहार पद्धति के बारे में बातचीत किया था, फिर भी मैं ये समझता हूं कि अभी मैं 5-10 मिनट में आपको शॉर्ट में बता के फिर क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। आपका कोई प्रश्न होगा ना, हम उसका उत्तर देंगे आपको। तो जो ये एक स्वर्णिम आहार पद्धति जो मैं रिकमेंड करता हूं, मैं सभी को बताता हूं, और आज तो अपने भाई बहनों में से करीब 1 लाख लोग, भाई बहन 1 लाख से भी ज्यादा भाई बहन इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लगभग सभी प्रकार के रोग में इसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो इसमें कोई गोली दवाई लेने की बात नहीं है, लेकिन हमारा जो भोजन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा उपवास माने आराम, सफाई के लिए शरीर में सफाई, जब कोई गंदगी हो जाती है तो उसकी सफाई के लिए थोड़ा समय देना शरीर को, और थोड़ा एनिमा का प्रयोग, इसके द्वारा ही रोग मुक्ति, चाहे वो डायबिटीज है, थायराइड है, इवन कैंसर तक में भी रिजल्ट मिले हैं इसमें अच्छे, तो हर प्रकार के उसमें रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसके लिए पांच सात रोगों का एक मुख्य कारण ये बताया है हमने इसमें कि शरीर में टॉक्सिन कचरा या जिसको मल कहते हैं वो जब इकट्ठा हो जाता है तो शरीर में कोई न कोई रोग हो जाता है। रोगों का एक ही कारण है मुख्य, उसी के कारण रोग, अलग अलग रोग जिस शरीर में जिस अंग में कचरा इकट्ठा हो जाता है उस अंग के नाम के आधार पर रोग का नाम दे देते हैं, बाकी है रोग एक ही है शरीर में कचरा इकट्ठा होना। और रोग मुक्त होना है तो शरीर को कचरे से मुक्त कर देवे। और प्रकृति ने यह शरीर बहुत वंडरफुल शरीर बनाया है, कचरा निकालने के लिए भी इसने 9 गेट रखे हुए हैं जिसमें से कचरा निकालती रहती है शरीर में से। तो हम उसको कचरा जब शरीर में से प्रकृति निकाले तो उसको मदद करें और कचरे से मुक्त करें तो रोग मुक्त हो जाएंगे। आज हर एक को रोग से पीड़ित है, छोटा मोटा रोग हर एक को है मोस्टली, तो कोई न कोई गोली दवाई इंजेक्शन आईडेक्स सब यूज करते रहते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले है दिनचर्या। तो उस दिनचर्या में हम मैं ये सजेस्ट करता हूं कि सवेरे उठने के बाद 5-6 घंटा, जैसे हम 3:30 बजे उठते हैं तो 8:30-9 बजे तक जो है हम उपवास, उपवास मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं, वो उपवास हम रखें। और उसके बाद हल्के से भारी भोजन, हल्का भोजन जैसे स्प्राउट है, सलाद है, या कोई जूस है, हरी पत्तियों का जूस है, फल का जूस है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, ऐसा कोई भी हल्का। और उसके बाद दिन में जैसे जैसे आगे खाना हो तो उससे भारी ले सकते हैं। उस भारी में आप यही जो फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, स्प्राउट है, नारियल है, खजूर है आदि, जो भी प्रकृति का बनाया हुआ अमृत है वो लीजिए। और अगर पका हुआ खाना है, कोई भी चीज आप पकी हुई खाते हैं, गैस पर चढ़ाई हुई चीज खाते हैं, तो पहले 50% कच्चा सलाद जरूर खाने का, उसके बाद पका हुआ भोजन खावे। बस इतना सिंपल है और कोई ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है। खाने से पहले पका हुआ, अगर कच्चा खा रहे हैं तो आप कुछ भी खाइए, कभी भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पका हुआ खा रहे हैं तो पहले 50% सलाद जरूर खावे और फिर पका हुआ खावे। और भूख लगे तब खावे, ऐसा नहीं कि भाई बस दिन में 3 टाइम 4 टाइम खाना है, 5 टाइम तो खाना ही है। भूख लगे जब आपको तब आप उसको भोजन को स्वीकार करें, और प्यास लगे तब पानी पीवे, और जितनी भूख लगे इतना ही खावे। ऐसा नहीं कि आज खीर बनी है, हलवा बना है, जामुन बना है, समोसा बना है तो 2-4 ज्यादा टिका दिए। जितना जीभ का मजा उतना पेट को सजा। तो मजा का उल्टा है जाम, तो यहां मजा लिया अंदर जाम हो जाता है, और जब इंजन जाम हो जाता है तो क्या होता है, गाड़ी में से धुआं निकलने लगता है और फिर गाड़ी खराब हो जाती है। तो ऐसे जरा मजा का दूसरी रूप से मजा लेवे, ये मजा नहीं लेवे, जरा नकली स्वाद का मजा नहीं लेवे, असली स्वाद का मजा लेवे। अच्छा, भूख लगे इतना खाने का, प्यास लगे उतना ही पीने का। अगर आधे ग्लास पानी में प्यास बुझ जाती है तो आधा ग्लास पानी लेवे और आधा ही पीवे। और एक और इम्पोर्टेंट नियम है खाने के समय चबा चबा कर खाने का, 32 से 40 बार चबाने के बाद ही गिट्टी अंदर उतारनी है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आंतों को दांत नहीं है। चबाने का काम किसका दिया है शरीर में? भगवान ने आंतों को दिया हुआ है। तो आंतों को चबाने का काम दिया है तो हम तो क्या करते हैं, यहां से तो फटाफट अंदर अंदर फटाफट भेजा तो क्या हो जाएगा, अंदर आंत जो है उसको चबा नहीं सकती, तो फिर इंजन खराब। इस सारी मोटर का हम 7 दिन के कोर्स में बताने, शरीर हमारा एक मोटर है, तो इस सारी मोटर का जो मेन इंजन है वो है पेट। इंजन खराब हुआ तो धीरे 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 दूसरे पार्ट्स भी खराब होते जाएंगे। तो इंजन खराब नहीं हो वो हमको खास ध्यान रखने का है। तो चबा चबा कर खाने का, 32 से 40 बार चबा कर खाने का। हम ये समझते हैं कि पाचन क्रिया यहाँ पेट में जाके होती है फिर अंदर पचता है, पर सही बात यह है कि पाचन क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। भोजन में मुंह से जो लार मिक्स होती है उसी से पाचन शुरू हो जाता है। पाचन में मेन जो रोल है वो लार का है जो मुंह में मिक्स होती है, और मुंह में कब मिक्स होगी, जब मुंह में भोजन रहेगा। मुंह में भोजन रहा ही नहीं तो लार भी मिक्स नहीं होगी। तो जितना हो सके चबा चबा कर, 32 से 40 बार चबा कर फिर ही खाने का, और पानी भी घूंट घूंट करके पीने का। ऐसा नहीं ग्लास उठाया और एक सेकंड में खाली कर दिया, वो नहीं, पर घूंट घूंट करके पानी पीने का, ये पानी पीने की रीत है। तो इस प्रकार से ये भोजन के सिंपल नियम है, और जो चीज खाने योग्य है वही खाने का, जो नहीं खाने योग्य है वो नहीं खाने का। क्या क्या चीज खाने योग्य और क्या क्या खाने योग्य नहीं है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। जो सदा खाने योग्य है, रोज आप खा सकते हैं, दिन में 2-3 टाइम खा सकते हैं, प्रेम से खा सकते हैं, भर पेट खा सकते हैं, सदा खाने योग्य चीजों में सभी प्रकार की हरी पत्तियां, सब्जियां, फल, अनाज, खजूर, नारियल, पत्तियों का, सब्जियों का, फलों का रस, नारियल पानी, अपना सादा पानी, और प्राकृतिक दूध। आप कहेंगे प्राकृतिक दूध क्या है, तो ये नारियल से बनता है, ये तिल से बनता है, सोयाबीन से बनता है, मूंगफली से बनता है, अंकुरित गेहूं से बनता है। वो बनने की विधि पूरी बुक में लिखी हुई है, पर आप प्राकृतिक दूध ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं। अच्छा, कभी कभी खाने योग्य, आप कभी कभी जिसको खा सकते हैं वो है पका हुआ, सेका हुआ, भुना हुआ या उबला हुआ कोई भी आहार, फिर देसी गुड़ में बनाई हुई मिठाइयां, सेंधा नमक, डबल फिल्टर तेल, और ड्राई फ्रूट्स, वो भी 12 घंटे भिगोने के बाद। हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट तो ऐसे ही खा लेते हैं, पाइल्स का प्रॉब्लम होने का मेन कारण है ड्राई फ्रूट्स। वो इतने चिकनाहट होते हैं, इतना हेवी होता है कि वो पूरी तरह से पचता ही नहीं और पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। तो ड्राई फ्रूट्स डालें तो ये चीज हम कभी कभी यूज कर सकते हैं। और कभी नहीं खाने योग्य, जो कभी नहीं खाना चाहिए, उसमें कुछ चीजें तो जैसे नॉनवेज वाली तो बाबा के घर में या बाबा के बच्चे खाते ही नहीं है, फिर भी जो लिखा हुआ है वो मैंने, मांस, मछली, अंडे, तला हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ, शक्कर, फैक्ट्री में बना हुआ नमक, रिफाइंड तेल, मैदे से बनी हुई चीजें, तीखी मिर्च, चाय, कॉफी, गाय भैंस आदि जानवरों का दूध एवं दूध से बनी हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, रसायनों से बने हुए जूस, किसी भी प्रकार की दवाइयां, शराब और तंबाकू के पदार्थ, ये कभी नहीं खाने योग्य है। तो इनको हम कभी नहीं खावे। केवल इतना सा ही अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये एक तो उपवास बताया जो सवेरे उठने के बाद 5-6 घंटे का उपवास, और शुरुआत में अगर ये भोजन पद्धति चालू करते हैं तो शुरुआत में 20-25 दिन, एक महीना एनीमा का प्रयोग। हमारा जो कचरा है ना, मेन स्टोरेज, वैसे तो सारी बॉडी में धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, लेकिन इस शरीर में कचरे का मेन स्टोरेज है हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत में सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है, और उस बड़ी आंत के कचरे को निकालने के लिए एनीमा का एक प्लास्टिक का डिब्बा आता है जिसमें 1.25 लीटर पानी आता है, उसमें नली लगी हुई होती है, उस नली के द्वारा बड़ी आंत, हमारे मल द्वार से वो नली 1-2 इंच अंदर डाल के उसका नल खोल देते हैं तो वो पानी अंदर चला जाता है और फिर वो कचरे को लेके निकल जाता है। तो 1-2 मास तक जो है इसका हम प्रयोग करें, 1-2 मास तो भी वो सारा कचरा अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आप जो कचरा वाला खाएंगे ही नहीं तो अंदर कचरा इकट्ठा होगा ही नहीं और आप सदा स्वस्थ रहेंगे। अभी आपको रिसेंटली एग्जाम्पल बताऊं, 1 महीने पहले की बात होगी, लगभग 20-25 दिन पहले की, मेरी माताजी यहाँ गांव में रहती है, उदयपुर के पास में गांव है वहां पे। तो 3 साल पहले उनको थोड़ा हार्ट का, उनको ऐसा लगा कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। तो उसने मेरे को फोन किया कि मुझे थोड़ा ये हार्ट का प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत दुख रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप यहां आ जाओ, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को हम बता देंगे, फिर जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे वैसे आगे करेंगे। तो वो यहां पे आई तो सतीश गुप्ता जी को बताया, उन्होंने चेक किया, कुछ टेस्ट किए, फिर उन्होंने कहा कि वैसे एक बार एंजियोग्राफी करा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ मेडिसिन भी लिखी। तो वो मेडिसिन लिया, फिर उनको यहां से मैं अहमदाबाद ले गया, वहां एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला कि भाई ठीक है सर, और फिर थोड़ी सी मेडिसिन दी तो वो मेडिसिन लिया। अभी 20-25 दिन पहले वापस फोन आया कि बहुत पसीना हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, छाती में दुख रहा है, बीपी बहुत हाई हो गया है, और अभी मुझे लगता है हार्ट अटैक आने वाला है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हार्ट का चेकिंग कराना ही है। तो तुम अहमदाबाद आ जाओ, और अहमदाबाद में आती हूँ और हार्ट का चेकिंग कराते हैं। मैंने उसको कहा एक काम करो, आप आबू आ जाओ, फिर हम गुप्ता जी को बता देंगे, और जरूरत पड़ी तो फिर अहमदाबाद जाएंगे। तो शाम को 5 बजे ये बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, कल दोपहर वाली बस से मैं निकल के आप शांतिवन आ जाती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने कहा आप ऐसा करना, अभी से आप खाना पीना बंद कर दो, केवल बहुत प्यास लगे तो नारियल जूस का नींबू का पानी पी लेना, और बाकी आप जो है रात को एक एनिमा, मैंने एनिमा का डिब्बा वहां दिया हुआ था, मैंने कहा आप रात को एनिमा ले लो और सवेरे उठ के भी एनिमा ले लेना, और दोपहर में फिर आप निकल के आ जाना। दूसरे दिन मैंने 11 बजे फोन किया कि आप कौन कौन सी बस से आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आना तो था लेकिन मैंने रात को एनिमा लिया ना तो बहुत कचरा निकला, और मैं 2 रात से सोई नहीं थी, तो मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई, तो बहुत गहरी नींद में मैं सो गई, और सवेरे भी उठ के मैंने एनिमा लिया तो और भी बहुत कचरा निकला, और अभी मुझे बिल्कुल ठीक है, बीपी भी नॉर्मल है, कोई घबराहट नहीं है, तो अभी मैं नहीं आ रही हूं। तो वो आई नहीं, अभी 25 दिन महीना होने आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो आती तो क्या होता, अगर वो बीपी हाई था और वो यहां आती तो क्या होता, वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट होती वापिस, 15,000 का खर्चा हो जाता और निकलता कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से ये बहुत बार कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि भाई कोई बड़ी चीज हो गई है, लेकिन एक छोटे से प्रयोग से ही वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से उसको पाइल्स का भी प्रॉब्लम था, तो एनिमा लिया, खान पान में चेंज कराया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये सिंपल नियम है, और दवाई एक ही है इसमें, उपवास एक ही दवाई है। कोई भी बीमारी हो, उपवास ही उसकी दवाई है। आप जितना उपवास करते हैं बीमारी उतनी जल्दी ठीक होगी। उसका स्लोगन है लंगनम परम औषधम, और इसके बहुत प्रयोग और बहुत रिजल्ट मिले हुए हैं। तो अभी इस बारे में आपको कुछ पूछना हो तो अपने पास 10-15 मिनट है, 10-15 मिनट तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और स्पेसिफिक जवाब दूंगा। आप जो है एक चीज आप नहीं पूछना कि मेरे को ये घुटने की तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, सिर दर्द होता है, गैस होता है, इसके लिए क्या करूं, ये नहीं पूछना। क्योंकि ये जो मैंने बताया है ये स्वस्थ जीवन के लिए, सदा स्वस्थ जीवन, मतलब अगर आप ये पद्धति अपनाते हैं तो जीवन स्वस्थ बन जाएगा। जीवन स्वस्थ बन गया मतलब बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसलिए अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग कुछ नहीं है, ये एक ही सिस्टम आप करेंगे तो इसमें सभी बीमारियों का हल निकल जाएगा। इसलिए अलग अलग बीमारी के लिए आप नहीं पूछे, बाकी कोई चीज समझना है तो आप पूछिए। एनिमा का डिब्बा वैसे कोई भी मेडिकल सर्जिकल शॉप्स होती है उस पे मिल जाता है। अब आबू की मेडिकल शॉप्स में है या मुझे नहीं पता है, बाकी शांतिवन में गेट नंबर 1 के सामने फरिश्ता कलेक्शन है, वो जरूर रखते हैं, तो आप वहां से मंगवा सकते हैं। और तरीके में बहुत जने रेचक पदार्थ लेते हैं, कोई जैसे आयुर्वेदिक की कोई फाकी लेते हैं, कोई चूर्ण लेते हैं, वो सब लेते हैं। ये सब घूल लेते हैं, लेकिन उससे जिस तरह की क्लीनिंग होनी चाहिए ना उतनी नहीं होती है। हाँ, इसलिए वो नहीं होती है और उससे कुछ नुकसान होने की संभावना रहती है। इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल है, सादा पानी है, अंदर गया बाहर निकल गया, बस डेट्स ऑल, इसमें और कुछ नहीं है। और मैंने खुद प्रयोग किया है इसलिए उसमें मुश्किल से 5 मिनट लगता है और सहज रीति से पूरा 5-10 मिनट में पूरा हो जाता है। और खर्चा भी कोई खास नहीं, लगभग 150 रुपया ऐसा कुछ आता है लाइफ टाइम के लिए, एक बार 150 रुपया खर्च करना है। वहां तो एक एक गोली भी 150 रुपये की आती है। हाँ जी, हाँ, प्राकृतिक दूध ले सकते हैं, नारियल का, सोयाबीन का बना हुआ दही जो है वो। बाकी दूध और दूध की, जानवरों के दूध और दूध की बनावट की कोई चीज मैं अवॉइड करने को कहता हूं। प्राकृतिक दूध की बनी हुई ले सकते हैं, जानवरों के दूध का कुछ भी नहीं ले तो बेहतर है। आप देखिए नारियल का दूध, अब मैं बताऊं आपको, गाय भैंस का दूध 45 रुपया लीटर आता है, उसकी छाछ बनाते हैं तो वो भी 30-35 रुपया लीटर पड़ती है, वो छाछ 25-30 रुपया लीटर वो छाछ पड़ती है। एक नारियल जो है, श्रीफल जो हम फोड़ते हैं, वो 15 रुपये का आता है, उसमें से 1.5-2 लीटर छाछ बनती है उसकी, आज छाछ बनाते हैं तो, और इतनी टेस्टी बनती है कि आप वो छाछ भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी वो छाछ बनती। तो एक तो प्योर चीज और सस्ती चीज और शरीर को स्वास्थ्य देने वाली चीज। नारियल, हाँ, इसमें लिखा हुआ है, सिंपल है, ग्राइंडर में क्रश करके पानी डाल के छान लेने का, उसमें नींबू सेंधा नमक डाल दो, ये छाछ तैयार। ये किताब वहां काउंटर पे शायद रखी हुई है, विजय भाई के पास वहां ऊपर, हाँ ऊपर है काउंटर पर, सदा स्वस्थ जीवन इसका नाम है, ये किताब वहां पे अवेलेबल है। हाँ जी पूछिए। हाँ, ये सेंधा नमक जो है ना, वो एक नेचुरल स्टोन है, एक पत्थर होता है, पहाड़ होते हैं उसके, उसका पीस के नमक बनाया हुआ होता है। और ये जो फैक्ट्री का बना हुआ नमक होता है ना, जिसको आयोडाइज्ड नमक बोलते हैं, ये समुद्र के पानी से मिलके बनाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा केमिकल मिक्स होता है, इसकी व्हाइटनेस लाने के लिए उसमें सारा केमिकल मिक्स होता है, तो उसमें शरीर के लिए कोई फायदे वाली बात नहीं होती है। एक्चुअली नमक की जरूरत नहीं है शरीर में, जो हम प्राकृतिक चीज खाते हैं ना, खीरा खाया या पत्तियां खाई या कुछ भी खाया, तो उसमें नमक मिलता ही है। आप जब आबू रोड से माउंट आबू चढ़ते हैं तो रास्ते में आपको बंदर जरूर देखने को मिलते होंगे। वो बंदर सारा दिन क्या खाते हैं, हरी पत्तियां खाते हैं, जब भी उनको भूख लगती है वो हरी पत्तियां खाते हैं, उनका भोजन ही वही है, हरी पत्तियां। उन हरी पत्तियों में उनको सब कुछ मिल जाता है, B12 भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, वसा भी मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है। बहुत बार पानी भी नहीं पीते, सब कुछ उसमें मिलता है। तो वास्तव में अलग से नमक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमको जो एडिक्शन पड़ा हुआ है ना, टेस्ट का जो एडिक्शन है, उसके लिए अगर आप थोड़ा डालना चाहें तो सेंधा नमक डाल सकते हैं। डबल फिल्टर तेल, डबल रिफाइंड नहीं यूज करना है। रिफाइंड क्या होता है, रिफाइंड का मतलब है जैसे हमने तिल का तेल निकाला, अब तिल के तेल को अगर कच्ची गाड़ी में निकाल के आपके सामने रखो ना यहां, तो वहां तक सुगंध आएगी उस तिल की, और वो तेल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। मतलब अगर जैसे एक ग्लास में भर के रखा तो, और ग्लास के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखा ग्लास के अंदर, और ऊपर तेल भरा हो, तो 1 रुपये का सिक्का आपको दिखाई नहीं देगा, वो मटमेले कलर का होता है वो तेल, जो ओरिजिनल होता है। अब हम क्या है, सभ्य मनुष्य है, तो हमको सभ्य चीज चाहिए, हम हर चीज अच्छी चाहिए दिखने में, तो कंपनी वाले तो तैयार बैठे हैं, तो वो उसको कार्बन प्रोसेस करके उसकी एक तो जो गंध है वो निकाल देते हैं, और दूसरा उसको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं केमिकल डाल के, मतलब आपको वो 1 रुपये का सिक्का पूरा दिखाई देगा वो रिफाइंड तेल में। हम उसको अच्छा समझते हैं कि देखो कितना प्योर है एकदम, एकदम क्लीन दिख रहा है, वो प्योर नहीं है, वो उसमें सब माल ताल निकल गया है जो शरीर के लिए लाभप्रद था, और हानि वाली चीजें उसमें आ गई, पूरी केमिकल आ गया। इसलिए रिफाइंड चीज नहीं यूज करनी है। राइस है, अब राइस जो हम व्हाइट राइस यूज करते हैं वो पूरा छिलका उतारा हुआ राइस होता है, पॉलिश्ड राइस होता है, केमिकली पॉलिश्ड राइस होता है, वो शरीर को नुकसान करता है। उसकी जगह जो छिलके वाला ब्राउन राइस आता है वो आप खाइए, वो शरीर के लिए फायदेमंद है। हाँ जी, नहीं आप कोई भी तेल लीजिए, लेकिन डबल फिल्टर तेल लेना है, रिफाइंड तेल नहीं लेना है। आप, मैं तो कहता हूं अगर आप अंकुरित मूंगफली खा रहे हैं, अंकुरित तिल खा रहे हैं, अंकुरित सोयाबीन खा रहे हैं, ये सब, तो एक्स्ट्रा तेल लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप ठीक है सब्जी में थोड़ा डाल दिया, ऊपर डाल दिया, तो आप वो कल ले सकते हैं, लेकिन डबल फिल्टर तेल लेवे, मार्केट में मिलता है डबल फिल्टर के नाम से, आप मांगेंगे तो मूंगफली का भी डबल फिल्टर मिलता है, तिल का भी मिलता है। हाँ, ब्रांडेड आता है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, दो तीन ब्रांड आता है मूंगफली का, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। और किसी का कोई प्रश्न? घी और बटर किससे बनता है? हाँ, तो मैंने मना किया, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। हाँ जी, अब ये तो आसक्ति नहीं छूटती है, ये तो गंभीर सवाल है, तो इसके लिए बाबा ने एक ही चीज कही हुई है, छोड़ो तो छूटे, सिंपल स्लोगन दिया हुआ है। चीनी, चीनी के लिए आपने बताया देसी गुड़, देसी गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, खजूर का इस्तेमाल कीजिए मीठे बनाने के लिए। बाकी चीनी तो पूरा ही जहर है, 100% टॉक्सिन है, कोई 1% भी उसमें फायदा नहीं है। उसका ओरिजिनल स्वरूप देखो चीनी का, गन्ना, वो उसका ओरिजिनल रूप है। आप चाहे जितना गन्ना खा लो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, चाहे जितना गन्ना चूस लो या गन्ने का रस पी लो। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोसेस हुई उसमें उसका अमृत चला गया और वो मृत बनता गया, और उसका लास्ट स्वरूप ये चीनी है जो पूरा केमिकल प्रोसेस्ड होती है। शक्कर और चीनी में क्या फर्क होता है मुझे नहीं पता है, एक ही बात होती है। क्यों खाने का, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रही क्या जरूरत पड़ती है। थोड़ी जरूरत है आपको, देसी गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए, वो भी करना पड़ रहा है। इसलिए हम तो ये कहते हैं आपको कोई चीज मीठी बनानी हो तो आप गन्ने की सीजन में गन्ने का रस डाल के मीठी बनाइए, किसी चीज को बनाना है तो सबसे बढ़िया। रोटी के साथ खाने के लिए पहले आप थोड़ा कच्ची सब्जी खा ले, 50% कच्ची सब्जियां खावे, फिर रोटी सब्जी खा लीजिए। दाल भात, अगर यही है कि 50% पहले जो है ना वो आप ये खा लीजिए, फिर ये खा लीजिए। अवॉइड करना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है दालों में भी, तो वो फिर मतलब ज्यादा मात्रा में फिर नुकसान करती है, ज्यादा मात्रा में नहीं। हाँ, थोड़ा सा ले सकते हैं आप। चावल बताया ना कि अगर पॉलिश्ड राइस है तो वो नुकसान करने वाला होता है। अब वो अवेलेबिलिटी पर भी है, हर जगह हर चीज मिले नहीं मिले, आपके घर में मिले बाहर नहीं भी मिले, तो 50-60% कच्चा खा लीजिए और सवेरे का थोड़ा उपवास कर लीजिए, तो अगर थोड़ा बहुत टॉक्सिन अंदर गया भी है तो उसमें से वो फ्लश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। उपवास का मतलब है न कुछ खाना न कुछ पीना, उसको उपवास कहते हैं। और उस उपवास में प्रकृति अंदर ऑपरेशन करके कचरा निकालती है। आप देखेंगे एलोपैथी में भी डॉक्टर जब कोई ऑपरेशन करते हैं सवेरे 10 बजे तो वो रोगी को क्या कहते हैं, रात को 10 बजे से पानी बंद, पूरी क्लीनिंग पहले हो जावे फिर उपवास फिर ऑपरेशन होता है। इसी प्रकार से नेचर को भी सफाई करने के लिए खाली जगह चाहिए अंदर का। हमने पानी भी पिया तो उसको पचाना पड़ता है अंदर को। पानी कोई ऐसे ही नहीं कि पिया और यूरिन से निकल गया, वो एक प्रोसेस होके निकलता है, पूरा पचाना पड़ता है। तो हर चीज को इस प्रकार से पचाना पड़ता है। तो उससे थोड़ी मुक्ति देने के लिए ये जो हम उपवास करेंगे तो इस उपवास में नेचर अंदर का पूरा क्लीनिंग करेगा, वो क्लीनिंग होगा उपवास के द्वारा और ऑपरेशन भी चलेगा। देखिए सबसे अच्छा पानी है नेचुरल वाटर जो फलों में सब्जियों में पत्तियों में पाया जाता है, वो सबसे अच्छा पानी है। आपको ये हो सकता है, आपको ये सुन के ये आश्चर्य हो, मैं ये नॉर्मल पानी पीता ही नहीं हूं। पिछले 6 मास में एवरेज मेरा वाटर कंजम्पशन आधा ग्लास रहा है दिन का, आधा ग्लास। जरूरत ही नहीं पड़ती है। पानी किसको चाहिए शरीर में? नमक को चाहिए, शक्कर को चाहिए, मैदे को चाहिए, तली हुई चीज को पानी चाहिए, इनको पानी चाहिए शरीर में। बाकी अगर आपने सलाद खाया तो उसको पानी की क्या जरूरत है, वो तो और पानी दे रहा है अंदर, 70% पानी है। आपने फल खाया 80-90% पानी है उसमें, उसको पानी थोड़ी चाहिए, वो तो पानी और दे रहा है अंदर। आपने जूस पिया 95% पानी है, उसको पानी थोड़ी चाहिए। तो पानी इन चीजों को चाहिए, नमक को, शक्कर को, मैदे को, तली हुई चीज को। अगर आप वो खा ही नहीं रहे हैं तो एक्स्ट्रा पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं नहीं पीता हूं पानी, दिन भर में पानी नहीं पीता हूं, मैं प्लेन पानी पीता ही नहीं हूं। अगर आप खाने का आदत डालेंगे ना तो अच्छी तरह से पेट भी भरेगा। और मुझे पता है कि हमको सदियों से नहीं जन्मों से एडिक्शन हो गया है पका हुआ खाने का। जब पका हुआ नहीं खाते तब तक लगता ही नहीं कि कुछ खाना खाया हमने। हम किसी को बताते हैं कि भाई आप ये खाना, ये सलाद खाना, ये तो भोजन कब करेंगे, वो एक ही सवाल पूछते थे, अरे ये भोजन ही तो बता रहे हैं हम, जो सलाद बता रहे हैं, सब्जियां बता रहे हैं, नारियल बता रहे हैं, ये भोजन ही तो कह रहे हैं। पर उनके लिए ये भोजन ही नहीं है। उनके लिए जब तक पका हुआ भोजन नहीं मिले तब तक कुछ खाया ही नहीं जैसे दिन भर में। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप शाम के समय पका हुआ भोजन भी लेवे पर 50% पहले कच्चा और उसके बाद पका हुआ भोजन लेवे। हाँ जी, कौन सी जरूरत? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपसे ज्यादा उछल कूद वो बंदर करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछल कूद करना, सारा दिन एक्टिव रहता है। आप तो कुर्सी पर बैठते होंगे फिर भी दिन में, उनके लिए कोई कुर्सी नहीं है, उछलना कूदना ही उनका धर्म है और केवल पत्तियां खाते हैं। हाथी कितना किलो वजन लेके घूमता है, कितने क्विंटल वजन लेके घूमता है, क्या खाता है? शाकाहारी है ना हाथी, तो क्या खाता है? पर उसको भी चाहिए तो सही ना, उसकी भी शाकाहारी बॉडी है, उसको भी चाहिए तो सही ना, उसको भी वसा चाहिए, उसको भी प्रोटीन चाहिए, उसको भी सब चीज चाहिए। और हम खा रहे हैं ना, हम आपके सामने बैठे हुए हैं ना, हम भी प्रयोग करते हैं इसमें। बीच में मैंने 3 मास बिल्कुल पका हुआ नहीं खाया, एक भी चीज पकी हुई नहीं खाई, फुल वर्किंग में रहे, कोई फर्क नहीं, और ज्यादा एक्टिवनेस रहती। ये तो हमको एक एडिक्शन हो गया, इसलिए हमको ये कि पका हुआ नहीं खाए तब तक काम नहीं चलता है। ऐसे भी भाई बहने जो 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए केवल नेचुरली पका हुआ। अच्छा, दूसरा ये पका हुआ इसका हम क्या गणित लगाते हैं, कैसे हम कहेंगे पका हुआ है? अब पका हुआ तो नेचर सूरज के द्वारा जितनी हमको जरूरत है उतना पका के ही देती है हर चीज। कच्ची केरी पक्की केरी होती है ना, कच्चा आम पक्का आम, कौन पकाता है? सूरज पका के देता है, केला पका के देता है, हर चीज वो पका के देता है। किसी को वो 15 दिन में पकाता है, किसी को वो 30 दिन में पकाता है, किसी को वो 60 दिन में पकाता है, किसी को वो 6 मास में पकाता है। वो अपनी रीति पकाता है, जितना उसको रोशनी देना है देके वो पकाता है। लेकिन हम क्या है, हम बुद्धिशाली हैं थोड़े ज्यादा, तो हम अपनी बुद्धि से उसको और पकाते हैं, या उसको जलाते हैं और उसका सारा सत्व जो है उसमें खत्म कर देते हैं। और फिर हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल ये नॉर्मली फ्रूट्स और सब्जियों में केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम क्या है, कलयुग में बैठे हुए हैं तो सब चीजें खराब है। अब उनमें सबसे कम खराब कौन सी है वो हमको चॉइस है। या तो अपनी खुद की खेती हो और हम पका के खावे तो चलो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो हमारे सामने है। लेकिन हमको तो डिपेंड तो बाहर मार्केट पर ही है, तो जो उसमें टॉक्सिन गया है पेस्टिसाइड के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, वो थोड़ा कम परसेंटेज में होता है, उतना परसेंटेज नहीं होता है। आपको कोई हॉस्पिटल में आप जाइए, वो ड्रिप चढ़ाते हैं, एक बोतल बड़ी चढ़ाते हैं ना, सलाइन लगा के पूरा चढ़ाते हैं, वो क्या है, केमिकल ही है ना, प्रकृति का बनाया हुआ तो नहीं है, 100% केमिकल है। अब जब इतना 100% केमिकल को भी ये बॉडी सहन कर लेती है, तो वो जो 2-4% फलों सब्जियों में आ गया वो उसको फिर फ्लश आउट कर देगी। वो है, नुकसान करने वाला है, लेकिन वो 2-4% जितना है वो उसको फ्लश आउट, और उसके लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उतना करना पड़ता है हमको। जी देखिए, अगर आप गाय भैंस को वो पौष्टिक आहार नहीं खिलाएंगे, दूध बनाने वाला इंजेक्शन नहीं लगाएंगे रोज, और ये सब चीजें नहीं करेंगे, तो वो उतना ही दूध देगी जितना उसके बच्चे के लिए चाहिए। कोई भी हर जानवर, ये प्रकृति का नियम है कि हर प्राणी का दूध उसके बच्चे के लिए ही होता है। बाकी आप देखिए, आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाके देखिए कि गाय भैंसों के दूध बढ़ाने के इंजेक्शन कितने बिकते हैं उनके। मुश्किल से कोई ऐसा होगा जो इंजेक्शन नहीं लगाता है गाय भैंस को, मुश्किल से। हाँ, अगर आपने घर में गाय भैंस पाली है और उसको आप अच्छी तरह से दूसरा खिला पिला रहे हो और ये कर रहे हो और फिर आपको खाने की इच्छा होती है, तो भले आप लीजिए, लेकिन इसमें से बैठने वाले कितने घर में पाल सकेंगे गाय भैंस को और वो अपना उस गाय भैंस का दूध पी सकेंगे, वो एक डाउटफुल है। बाकी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित में दिया है, जिसका डेट और वो सब मेरे पास है, और टीवी पर और इंटरनेट पर आप देख सकते हैं कि भारत में मिलने वाला दूध में 67% दूध सिंथेटिक दूध है। ये भारत सरकार ने कहा है, 67% सिंथेटिक दूध है जो गाय भैंस से मिला हुआ नहीं है, लेकिन केमिकल से बनाया हुआ है दूध है। तो कोई भी प्राणी, भाई साहब कोई भी प्राणी है, आप मनुष्य का बच्चा ही देख लो ना, एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, प्रकृति की व्यवस्था कितनी अद्भुत है। आप देखिए, बच्चे को पैदा होते ही दांत नहीं होते हैं तो वो कुछ भी खा पी नहीं सकता है, खा पी नहीं सकता है, तो प्रकृति ने मां के द्वारा ही उसकी व्यवस्था कर दी, और ऐसा दूध अमृत के समान की उसमें सब चीजें आ जाती है, मां के दूध में सब चीजें, उसको एक भी चीज एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, सब चीजें उसमें आ जाती है। जैसे ही बच्चे को दांत आना शुरू होता है, चबाने की वो कैपेसिटी में आता है, थोड़ा थोड़ा दूध बंद हो जाता है मां का। देखिए प्राकृतिक व्यवस्था आप देखिए, दूध बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जब 2 साल बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है, फिर क्या होता है, फिर मां को दूध आ जाता है। लेकिन अब कमाल की बात आप देखिए कि जो दूसरा बच्चा, पहला वाला बच्चा 4 साल का हो गया है, क्या वो मां का दूध पी सकता है? जब हम अपनी मां का दूध भी नहीं पी सकते हैं, तो पराई मां का दूध पीने का अधिकार हमको किसने दिया है? अपनी मां का दूध पीने का अधिकार भी हमको दांत आने के बाद नहीं है। सत्युग में बाबा ने कहा है, इसमें मुरली का डेट भी लिखा हुआ है अव्यक्तवाणी का, कि वहां का पानी इतना शक्तिशाली होगा जड़ी बूटियों वाला कि वही दूध समान होगा शक्तिशाली। इसीलिए कहते हैं कि दूध की नदियां बहती है, ऐसा स्पष्ट बाबा ने कहा हुआ है मुरली में। सवा 8 बजे तक का टाइम दिया था मुझे, मेरे पास तो टाइम है लेकिन यहां भी सेवादारियों को सबको फ्री होना होगा, इसलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, देखिए कोई भी चीज को आपने अग्नि पर रखी मतलब उसमें पौष्टिक चीजें कम होनी शुरू हो गई, कोई भी चीज, इसलिए थोड़ी तो कमी हो जाएगी। अभी पूरा करने से पहले 1 मिनट और बैठिए, बाबा का थैंक्स कर दीजिए, 1 मिनट बाबा को याद करके हम पूरा करेंगे। अभी अभी पूरा करते हैं, फिर आप पूछ लेना अलग से।